ने स्वयं कहा, जितने प्रकार के साध्य और साधन है वो उसमें हरिनाम जो है
नाम सब
नाम भगवान का स्वरूप विजयते कृष्ण नाम संकीर्तन। और यदि कुछ है भी तो वो नाम के माध्यम से वो सब कुछ उसका मिल जाएगा। इसलिए नाम कीर्तन या भगवान नाम रूप कीर्तन इत्यादि के माध्यम से स्मरण उसके अनुगत में होकर के होगा, स्मरण अपने आ जाएगा। कीर्तन प्रभावे से काले निर्धन भजन, इसके पहले मत करो। बहुत ही इसमें सब सिद्धांत हैं, भरे पड़े अगाध सिद्धांत इनमें विचार है। इसलिए हम लोग स्मरण पंथी अकेले नहीं होने जाएंगे, हम लोग कीर्तन और श्रवण, श्रवण और कीर्तन, पहले श्रवण तब कीर्तन उसके बाद में स्मरण अपने आप आएगा, उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा। यही सहजिक स्वाभाविक ये भजन का क्रम है। जद्यपन्या भक्ति कलौ कर्तव्या तदा कितना भक्ति संजोगे ने एव कर्तव्य, उसके अंतर्गत रह करके अनुगत होकर के ही स्मरण इत्यादि होगा। और तब यही प्रभुपाद जी का यही विचार, भक्ति विनोद ठाकुर का यही विचार, हमारे सनातन गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इत्यादि का स्पष्ट ऐसा आदेश और विचार। इन सबको जानने के लिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के 5 ग्रंथ हैं, भक्ति रसाम सिंधु बिंदु, बृहद भगवतामृत कणा और उज्ज्वल नीलमणि किरण, माधुर्य कादंबिनी और रागवर्ष। इनमें कुछ थोड़ा सा प्रवेश होना चाहिए भाई इन सब के लिए। अभी हमारा अधिकार नहीं है, ठीक है। प्रत्येक जितनी भी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको भी बच्चा पैदा करने का अधिकार है कि नहीं है? अवश्य एक दिन वो कर सकती हैं, इच्छा करें तो, भले ही आज पैदा हुई। ऐसे जीव मात्र ही भगवत प्रेम का अधिकारी है। स्वरूपतः जीवेर स्वरूप है, जरूर है अधिकार। कोई अपना अधिकार का उपयोग नहीं करता, कोई उसको पाने के लिए प्रयोग करते हैं, तो जो प्रयास करते हैं वो धन्य है, उनका जीवन सार्थक है। जो प्रयास नहीं करते हैं वो दुर्भागा है। इसलिए ऐसे मुनि ये लोग भी धन्य हैं। नहीं, ये कर्म शाखा ज्ञान शाखा को छोड़ करके वो जो निगम कल्पतरु है उस शाखा में भक्ति शाखा वो वृंदावन में जरा चली आई ना, कृपा करके ऐसे चली आई। अब इसी शाखा पर वो बैठे हैं, कौन बैठे हैं? व्यास। और वहीं से कृष्ण को देख रहे हैं, कृष्ण भी इनको देखें देख रहे हैं। कृष्ण इसलिए कि कृष्ण कृपा करेंगे उनके ऊपर, और वो वहां से निर्बाध गति से इनके तरफ में देखेंगे। इसलिए हमारा साधन ऐसा होना चाहिए हम उस साधन के माध्यम से कृष्ण को देख सकें, और कृष्ण की भी करुणा हो जाए तो हमारे तरफ में वो देख सके। ऐसा ही हम लोगों का साधन होना चाहिए। तो मुनियों के संबंध में निर्णय करके बोले, जैसे ये तो सनक सनंदन सनातन इत्यादि हैं, यहाँ पर आए हैं भजन करने के लिए, और मुरों का नित्य इत्यादि दे करके कैसे ये तन्मय कृष्ण की बंसी और कृष्ण का मुखारविंद दर्शन करके, ये हम लोगों के लिए संभव पर नहीं होगा, ये कभी संभव ही नहीं है। यदि हम लोग जन्म लें पक्षी और उड़ उड़ करके जहां कृष्ण जाते हैं गोचारण के वहां जाएंगे, जब गृह में लौटते हैं तो पक्षी होकर वहां चलेंगे, रात हो गई तो यशोदा मैया के भवन में एक जगह कहीं पर बैठ जाएंगे और वहां पर से दर्शन करेंगे, फिर सवेरा हुआ कृष्ण चले तो हम भी चलेंगे। वह पक्षी जन्म सबसे अच्छा है, उसकी क्या उसके दोष है इस पर उनका विचार है, वो तो भाव से चल रही है। इसलिए ऐसी भावना करते ही लंबी आह छोड़ी, ये संभव नहीं, हताश हो गई, आकाश शून्य आकाश की तरफ में देखा, शून्य आकाश में पड़ते ही नजर गई नदियां भी हैं। हाँ अच्छा अच्छा, तो वो कुछ ऐसे हो करके सोच रही, ये तो जन्म नहीं हुआ, अभी अभी न, ये अभी श्लोक नहीं हुआ है, हाँ नेत्र से देखती है। कृष्ण सबके लिए सुलभ है। हठात नजर पड़ी नदियों पर, उनको कृष्ण का कोई भी संबंध चाहिए, जहां संबंध आया है बस अपने को धिक्कार, और वही संबंध सबसे अच्छा है, वही हमारा जन्म हो जाता है, ये भाव आता है। भाव आते ही हृदय में उनकी तरंगे उठी और ऐसी तरंगायित हो गई, जो अपने भाव को जो छिपा करके अवहित्ता के रूप में रखा था, वो अपने आप वो उष्मा की भांति नीचे से एकदम निकल पड़ा, वो रहा नहीं। सबसे सुंदर भाव क्या है? गोपियों का भाव, किंतु ये तो भूल गई हैं। अब उसी के भाव, ये भाव नदियों में है, ये भाव पक्षियों में है। उत्तम भक्त का एक लक्षण है, उसका
सर्वभूतेषु
यः पश्यति भगवत भावम् आत्मनः तानि भगवत आत्मनेषु भगवतोत्तमः। अपना भाव और अपना कृष्ण के साथ संबंध प्रत्येक जीवों में लक्ष्य करता है। मैं सखा हूं तो सब जगह, ये कृष्ण हमारे सखा हैं, इनके भी सबके सखा हैं। अपना भाव उसमें देखेंगे और भगवान में क्या देखेंगे? अखिल प्राणियों के भावों को दर्शन करेंगे, भगवान का भी उनके प्रति वैसा ही भाव दर्शन करेंगे, दोनों रिसिप्रोकल, एक दूसरा जैसा। इसी को चैतन्य चरितामृत में सर्व दामोदर के प्रति चैतन्य महाप्रभु जी ने बतलाया है। क्या? जहां जहां पर उनका नेत्र पड़ता है,
खबर जंगम
देखे ना देखे तार मूर्ति
सर्वत्र सुरेता।
तात्पर्य क्या? थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति माने क्या? जरा विचार किया, हम तो विचार किया तो हमको तो पहले कुछ मालूम नहीं हुआ, किंतु हमने जो समझा वो गलत समझा, कि क्या समझा अभी तक हमको ठीक पता नहीं। वैष्णव लोग हैं ये, लोग विचार करके बतलाएंगे। हमने बहुत दिन चिंतन करने के बाद हमारे समझ में कुछ नहीं आया, किंतु विचार करना छोड़ा नहीं। जो विचार नहीं आता है समझ में, तो उसके लिए जब तक कि वो नहीं समझ में आ जाएगा, लाख लोगों से पूछेंगे, इधर करेंगे, विचार करेंगे, शास्त्र देखेंगे, कैसे न कैसे वो समाधान होना चाहिए। विचार करते करते एक दिन विचार आया, था और जंगम देखे, देखते तो हैं किंतु
ना देखी तार मूर्ति,
तार मूर्ति मन मूर्ति नहीं देखते। मूर्ति माने क्या? वो जिस रूप में अभी है, जैसे पेड़, कहां का पेड़? महाप्रभु देख रहे हैं पुरी में, चटक को देख रहे हैं, बालू की एक ढेर को देख रहे हैं, तो उस बालू के ढेर को तो देखा, किंतु बालू के ढेर को उसके बालू के रूप में नहीं देखा, देखा गोवर्धन के रूप में। इससे देवे स्फूर्ति, और उस गोवर्धन में देखा कृष्ण के पद चिन्ह इत्यादि, और उसमें देखा कृष्ण के बैठने के लिए सिंहासन, और उसमें से झरना, मानसी, गंगा इत्यादि को उन्होंने भाव मित्र से सबसे करके भाव अभिवश हो जा रहे हैं वृंदावन में। राहुल किला के बाद में गभीर जंगल पड़ता है, जब रेल से जब जाते हैं, कितना गभीर जंगल, अभी भी उसमें बाघ हाथी इत्यादि सब है। महाप्रभु चले जा रहे हैं, वन को देखा, देखा क्या? अरे ये तो वृंदावन में पहुंच गया, देखा साल के बड़े बड़े वृक्षों को, तो साल के वृक्ष को नहीं देखा, केवल वृक्ष देखा, किंतु उसका मूर्ति जो ये साल नहीं देखा, कदम्ब देखा, खूब हरे हरे वृक्षों को देखा तो देखा ये तो कमाल, और पक्षियों को देखा तो देखा तो मोर, या मोर साध हो भी सकता हो, बस देख करके एकदम भाव देखा, जब बंदा बना गया और कृष्ण को देखा, कोई नदी देखा, उसका पानी देखा हरा, बस ये जमुना जी है, जमुना में कुछ पड़े, बस ऐसे ही मोती था। उनको देखा तो ये है, किंतु उनको उस रूप में नहीं देख करके देखा, वृंदावन की स्मृति हो गई, कृष्ण की लीला की स्मृति हो गई, अवश्य एकदम भाव में सन्ने। ऐसे ही यहाँ पर बतला रहे हैं कि भाव का भी भाव बतला रहे हैं। गोपियां वहां पर जो देख रही हैं अपने भाव रूपी नेत्र से, घर में तो बातचीत कर रही हैं, किंतु देख क्या रही हैं? वन में वो सब देख रही हैं। और जहां जहां उनका कोई भी संबंध कृष्ण से मिला और बस उसी में विभावित होकर के उसी का महात्म वो वर्णन करने लगी। ये भाव जो दास्य सख्य वात्सल्य और मधुर का है उन वस्तुओं में नहीं है, है किसमें? इसको कहते हैं उद्दीपना, उन वस्तुओं को कहते हैं उद्दीपना। उद्दीपना को देखा और उद्दीपना से स्फूर्ति होकर के एकदम भावमयी एकदम बन गई। भक्ति में ऐसा ही होना चाहिए, जिस भक्ति में आसक्ति नहीं उद्दीपना नहीं वो भक्ति अभी बहुत नीचे स्तर की है, ऐसी उद्दीपना होनी चाहिए। अब इनको देख करके उद्दीपना हुई क्या? नदी के तरफ में देखा वो कृष्ण निकट आ गए हैं, हमारे प्यारे कृष्ण। कुछ ऊंची ऊंचा स्थल है और वहां पर देखा कि गायें इधर उधर सब बिदक गई हैं, कोई यहां कोई वहां कोई वहां, सब गायें चली गई, बस बंसी ली और उसमें कोई स्वर उसमें उन्होंने आवाज किया गायों को बुलाने के लिए। अब वो स्वर सुन करके अब गायें आई कि नहीं आई है अब उसका उनका विचार में देख रही है कृष्ण खड़े हो गए हैं यमुना के तट पर और वो तट कुछ ऊपर है और बंसी बजाया, भाव में विभोर हो गई। देखा क्या? अरे ये यमुना मानसी गंगा, ये तो उनकी प्रेयसियां हैं, यमुना जी की उस प्रेक्षा की प्रेयसियों से उपेक्षा करके कहती हैं, न दस सदा तदुपधार्य मुकुंद गीत आवर्त लक्षित मनोभव भेक्न भेगा आलिंगन स्थगित उर्म भुजई मुरारे गृहंती पाद जुगलम कमलोपहार। नदिया देख करके जा रही थी अपने पति से मिलने के लिए, हाथों में कुछ उपायन है, सोने के थाल में कमल के पुष्प चंदन घिस करके और सब चीजें पानी एक पंच पात्र में रख दिया है, माने आसन अर्घ पाद्य अर्घ पुष्पमाल्य और समर्पण करने के लिए अंतिम पुष्पांजलि के लिए भर करके रख दिया है और ऐसे हाथ पर रखा है और जा रही है, चिंता करती हुई जा रही है अपने पति के पास। पति कौन है? समझ रहा है उसके साथ में बड़ी देख से चली जा रही है, देख से जाती है ना, देरी विलंब न हो जाए, बड़ी देख से जा रही है। और इसी बीच में कृष्ण की बंसी की तान सुनाई पड़ी, न सदा सदा माने तब, तब माने कब, ये जो बतलाया कब, जाने का भाव बतलाया, ये सदा सदा तदुप धार्य मुकुंद गीत, मुकुंद का गीत उनके कानों में पड़ा, कैसे? बंसी के द्वारा पड़ा। मुकुंद किस लिए कहा? मुक्ति ददाती थी मुकुंद, ये ब्रजवासियों को यह अच्छा नहीं लगा। मुक्ति सुखम कुत्सितम कृत्वा प्रेमानंदम ददाती इति मुकुंद, मुक्ति को तुच्छ बनाकर, तुच्छ बेकार ये क्या चीज लेंगे, हमको तो प्रेम की आवश्यकता है, इसलिए कृष्ण से हमको प्रेम मिलेगा और कृष्ण प्रेम देते हैं, द माने देना, ऐसे कृष्ण को मुकुंद कहते हैं। कुछ लोगों को ये स्वीकार होने पर भी जो गोपी भावास्थित हैं उनके लिए ये ठीक नहीं, क्योंकि वो प्रेम उनके पास में है ही है, उनको क्या लेना देना है, इसलिए उनका अर्थ होगा अपना कुंदैव प्रस्फुटितम मुखम जस्य, कुंद के समान सब समय उनका मुखारविंद विकसित है। मुस्कान मुखों पर, ओठों पर, दोनों अधरों पर खिल रही है। कुछ बंकिम भाव है, त्रिभंग ललित रूप से खड़े हैं। ऐसे जो कृष्ण वहां पर खड़े हैं ना, ऐसे मुकुंद कुंद की भांति सब समय खिले रहते हैं जिनका, ऐसे मुकुंद घी। और भी स्वर मूर्छना आवाज इत्यादि के माध्यम से जो बजा रहे हैं, सीधा उनके कानों से प्रवेश करके हृदय को भी चोरी करके लेकर के चला रही है। ऐसा सुंदर स्वर और भंगी के साथ में मुख से वो बजा रहे हैं, बस थमक गई। थमक जाना मैंने क्या, रुक गई, रुक जा, रुक जा। बंसी ने कहा जा, रुक जा, कहां जा रही है। बस वो रुक गई, रुक करके इधर उधर देखा, अरे ये तो निकट ही में बहुत ही सुंदर श्याम सुंदर जी खड़े हैं। देखी और इधर से बंसी की आवाज, मानो उनका भी हृदय चोरी कर करके निकाल ले आई बंसी। और वो जो जा रही थी वो जा करके ठिठक करके, और उधर जाना उनका बंद हो गया। बीच से वो लौट पड़ी, ये भी चिंता नहीं हुई ये लौटना उचित नहीं है, पति को छोड़ करके और दूसरे के पास में जाना तो उचित नहीं, किंतु वो जो चोरी कर लिया था ना मन, इसलिए चिंता नहीं कर सकी। विवेक और अविवेक उनके पास में कुछ नहीं था जिसके द्वारा वो चिंता कर सके। विवेक भी चला गया, विवेक भी ले लिया, जो कुछ था उनका सभी कुछ मन से तो विचार करेंगे बुद्धि से, वो तो सब ले लिया, इसलिए कुछ विचार ना कर सकी। बेचारी ठगी हुई थी हरिणों जैसे एकदम लौट पड़ी, उधर से लौटी और उधर से ऊपर से उनका बेग आ रहा है। अब वो नीचे वाला बेग उधर जा रहा है और नीचे वाला ऊपर आ रहा है, लौट रहा है ना कृष्ण की तरफ में, इसलिए वहां पर पानी घूमने लग गया। इसको कहते हैं कि मनोभव भग्न बेग। वो जो बंसी की तान उन्होंने सुना और लक्षित उनका जो कामदेव मनमत कोटि मनमत मनमत कृष्ण है, और मुकुंद का जैसा वर्णन किया वो रूप दिखा, बस सब कुछ भूल गई। वो नीचे से आगे बढ़ने लगी और ऊपर से आ रहा है, पानी स्थित हो गया, स्थित होकर के क्या हुआ, घूमने लग गया। और पहले हमने बतलाया कोई अपना कोई व्यक्ति प्रिय मिले तो उसका स्वागत होना चाहिए ना। आसन पहले आचमन, आसन पाद्य अर्घ, इसके बाद में मधुपर्क इत्यादि देंगे, पुष्प माल्य देंगे, इसके बाद में अर्पण करेंगे वो। अब जमुना जी जब लौट पड़ी ना तो धीरे धीरे लौटी तो पानी बढ़ने लग गया, तो वो पानी जो था कृष्ण के चरण कमलों तक आया, ये उनका पाद्य हुआ। पाद्य देकर के खूब धो लिया और धो करके मानो पान कर रही है, प्रेम में अधीर हो गई और वो प्रेम बढ़ा ने? वो जो भग्न वेग था उधर से तो भग्न हो गया, किंतु जब भग्न होगा तो होगा क्या, ऊपर वाला तो आएगा ही, स्फीत होने लग गया। और वो कमल जो था उसमें जब पानी बढ़ा तो कमल की तो डंडी होती है, वो कमल की डंडी सीमित होती है, तो वो पानी जहां तक बढ़ा तो वहां तक तो वो बढ़ा कुछ, किंतु अंत में इतना पानी बढ़ गया वो टूट गया, अपने कमल को तोड़ लिया यमुना जी ने, तोड़ करके उपहार के स्वरूप रख लिया ने? और उपहार लेकर के अपनी भुजाओं से, उर्मी रूपी भुजा से कृष्ण के चरणों में अर्पण कर दिया। जब अर्पण कर दिया तो कुछ बात होती है, एक तो यदि उसको ग्रहण कर ले लिया तो बस हो गया, और उस पर भी उसकी उपेक्षा यदि कोई करे, दे दिया अपने को सर्वस्व दे दिया ने? और ही नहीं प्रसन्न होता तो क्या करेगा, उनके चरणों में खुद ही गिर जाएगा। अभी तो छोड़ दो, अभी चल रहा है। अभी मध्य में से सुख में भी जब जरूरत हुई तो बतला दे। क्या बतला रहा कृष्ण ने? मानो कुछ थोड़ी सी उपेक्षा कर दी, कृष्ण जहाँ खड़े थे वहीं पर रह गए। भाई इतना किया तो भी प्रसन्न नहीं हुए, पाद्य दिया तो भी प्रसन्न नहीं हुए, उपहार भी दे दिया तो भी नहीं हुआ। अब किंतु उमंग बढ़ रही है, प्रेम प्रवृद्ध, प्रेम तो बढ़ा वो, अर्थात वो जो धारा थी उनका पानी वो बढ़ा, बढ़ करके कहां तक गया? कृष्ण के वक्षस्थल तक पहुंच गया। माने जमुना जी ने देखा इसे काम नहीं चलना चाहता, ये नहीं मानता चाहता ठग, बस दोनों भुजाओं रूपी थी, बढ़ करके एकदम यहाँ तक पहुंच करके और उनको ऐसे पकड़ लिया। अब कृष्ण जाएंगे कहां? बस उनके वशीभूत हो गए, वो इतना इनका सौभाग्य, हमारे लिए क्या संभव होगा? तो उसी को कह रहे हैं आलिंगन स्थगित उर्म भुजाई मुरारी। मुरारी शब्द क्यों कहा? अरे मूर नामक राक्षस को मारने के कारण ये मुरारी इनका नाम हुआ, तो यहाँ इस अर्थ में इनकी क्या उपयोगिता है मुरारी शब्द का? ब्रह्मवैवर्त में या बराह पुराण में शायद बराह पुराण में एक उल्लेख है, ये नारद ऋषि और पुलस्त ऋषि में कुछ या किसी में वार्तालाप हो रही है, तो पुलस्त इत्यादि ऋषियों ने नारद जी से पूछा इनका नाम मुरारे क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, जरा हमको कृपा करके बतलाइए। लोग मुरारी मुरारी बहुत लोग कहते, उन्होंने किसी युग में सत्य युग में कश्यप की स्त्री दनु है ना, दनु है कश्यप की स्त्री द्रौपदी, देखा जी देवता लोग दानवों को बहुत तबाह करते हैं, कष्ट देते हैं, और हमारे लड़कों को जब कष्ट देते हैं तो हमको भी बड़ा दुख होता है। एक ऐसा कोई पुत्र हो जो देवताओं को जरा शिक्षा दे दे और उनको अभी दमन कर दे तो हमारा हृदय उल्लसित हो जाएगा। उसने कठोर तपस्या की, प्रभु हमको एक ऐसा पुत्र हो, अपने पति से कहा हमको एक ऐसा पुत्र हो जो देवताओं को भी शिक्षा दे सके, उनको हरा सके। सब समय हमारे पुत्र असहाय बने रहते हैं, इसलिए ऐसी स्थिति ना हो, इसलिए उन्होंने तपस्या। अच्छा एवं अस्तु, तुम तपस्या करो भगवान की, ब्रह्मा की या भगवान की, किसको कहा? उन्होंने तपस्या किया तो उससे मूर नामक का एक लड़का पैदा होने पर उन्होंने कहा बेटा तुमको हमने इसलिए जन्म दिया है इनको परास्त करना है, तो तुम क्या करो? उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की बहुत हजारों वर्षों तक, मैं देवताओं को भी परास्त कर सकूं, हमसे कोई अजेय न रह जाए, मैं सबको जीत लूं। बहुत दिन तपस्या करने के बाद कठोर प्रसन्न होकर के बरम ब्रूही, तो उन्होंने कहा बर मांगा, क्या बर चाहिए? तो बर ऐसा दें, बर ऐसा दें जिसके ऊपर मैं अपनी हथेली रख दूं वो जल करके भस्म हो जाए। बाढ़ बड़म मने
यो बड़म इसी का
ये हो, ठीक ऐसा ही होगा। इसके भाई सुन तो लो, हो सकता भी इसका भी बामन पुराण का ये उपाख्यान है, ऐसा हो। बस ऐसा हुआ, वो लौट करके फिर आ गया अपने समाज में, अब देवताओं के लिए अजब बन गया, जम के पास में सबसे पहले पहुंचा, ये बड़े तेज है, इनको यदि परास्त करते हैं, इंद्र इत्यादि को परास्त करना मेरे लिए कोई कठिन बात नहीं है। तो वो हाथ जोड़ करके सामने खड़े हो गए, तुमसे युद्ध नहीं कराता, नहीं आपसे मैं क्या युद्ध करूंगा, मैं तुच्छ आदमी, आप नारायण के पास में चले जाएं, वो आपकी इच्छा को पूर्ण कर देंगे। तो नारायण कहाँ है? तो वैसे तो भाई उनका ठिकाना कुछ नहीं, सर्वत्र है, सभी क्षीर सागर में रहते हैं या गर्भोदशाई में रहते हैं, उन्हीं को बतलाया होगा, वहां पर तो इनके लिए जाना तो संभव नहीं, इसलिए उनको बता दिया ये नारायण के पास में गया। नारायण ने कहा जैसे किस लिए आया यहाँ, कैसे आगमन हुआ तुम्हारा? तो मैं यहाँ आया आपसे युद्ध करने के लिए। तो तेरे जैसे लोगों से मैं क्या युद्ध करूंगा, तू तो डर के मारे कांप रहा है, तुम्हारा हृदय धड़क रहा है, तुम्हारे जैसे भीतु आदमी से मैं युद्ध नहीं करता, नहीं हमारा शरीर धड़क रहा है, सचमुच से देखा और जहां देखा तहां बस जल करके खा गया। यह मूर्ख का उपाख्यान है। अब ब्रह्म विवाद में कहा गया तो इससे इसका संबंध क्या, यहाँ जल करके खाक हो गया, नहीं थोड़ा सा संबंध यो है, कृष्ण नारायण के समय ना, कौन कहा है ये
नारायण,
ये नारायण के, नारायण का गुण इनमें संक्रमित होता है, तो इसलिए ये नारायण ही है। अब नारायण ही है तो क्या हो गया, कहते हैं कि भाई मूल शब्द का शब्द कोश में विश्व शब्द अमर कोश में या इसमें पांच अर्थ लिखे हैं, वो पांच अर्थ हैं, मैंने इसमें हमको याद नहीं था इसलिए इसको लिख दिया, मूरह क्लेशो संतापे काम भोगे चक कर्मणाम दैत्य भेदेही अरिस्ते संग मुरारितेन प्रकृतिता। अर्थात मूर किसको कहते हैं, क्लेश को, अच्छा दूसरा हुआ संताप, जितने प्रकार के संताप हैं, और तीसरा हुआ काम भोग, काम भोग करने की लालसा जिसमें हुए ये भी मूर है, और च कर्मणाम और कर्मों का फल भोग करने के लिए जो उतावले बने रहते हैं ये सब दैत्य है और ये मूर है। इनका जो विनाश करने वाला है वो मुरारे है। तो यहाँ पर किस लिए लिया है, वो काम का संबंध ले लो,
जमुना के
अब ये जमुना के हृदय में या गोपियों के हृदय में काम रूपी जो अरी है अपने दर्शन से अपने चरणों की स्पर्श से अपने हस्त स्पर्श से कृपा से इनको वो मूर जो काम रूपी है उसको दूर करने वाले हैं, इसलिए ये मुरारी का यहाँ पर अर्थ लिया है। अपने स्मित हस्त से बंसी वादन से उनके इस काम के भाव को भी दूर करना, मत जलाओ भाई नहीं तो मुक्त आएगा। इसलिए कहते हैं आलिंगन स्थगित उर्म भुजई मुरारे, उनका जो काम रूपी जो ताप था उनको जो बस्तक से धारण किया, काम ताप को सदा के लिए उन्होंने दूर कर दिया, विजहो तापम, ताप को सदा के लिए दूर कर दिया, उनका हृदय सुशीतल हो गया और वो कृष्ण के चरणों में एकदम लिपट गई जमुना जी। अब ये कह रही हैं मुमुहुर गहनंति पाद जुगलम कमलोपहारा, अब वो कमल उपहार वहां पर चढ़ा हुआ है और पाद्य भी दे करके धो दिया है और हृदय से भी उनको ग्रहण कर लिया, वो इतना सौभाग्य हमें होगा, हाय 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 सचिरी ऐसा संभव पर नहीं है हम लोगों के लिए, हम लोगों को तो चरण में बहुत दूर से पहुंच जाए और उनकी स्मृति भी आ जाए तो बहुत है, हमारे पति लोग हमारी सास सासुड़ी ये सब इतनी अधिक विद्वेषी हैं, हम लोगों को तो ये देखने मात्र से ही उत्पीड़ित करेंगे और जल जाएंगे, इसलिए संभव नहीं। लंबी आंख लेकर के और तब आकाश की तरफ में देखती हैं, उसके लिए कह रही हैं दृष्ट्वा तपे ब्रजपतून सहराम गोपी संचारयंतम वेणु मधुर यंतम प्रेम वृद्ध उदित कुसुमावली भी सत्कुर पदार्थ सब अपुसाम्बुद आत्तपत्तन। आकाश की तरफ में देखा, आकाश में देखते हैं, अरे ये कृष्ण के तो ये सखा है, कैसे सखा है और उनके पति इनकी क्या भावनाएं हैं। अब अगले दिन हम लोग इसका वर्णन करेंगे।
वैराग्य युगभक्ति रसं प्रयत्न अपायन्नानुमभिक्षुमन्दं कृतां बुधिर्या करदुःखदुःखे सनातनं प्रभुमात्मनः श्रीचैतन्यमनोवे संस्थापितं येन भूतले स्वयंरूपः सदा महेन्द्रदासि यं प्राव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहका तर्याजिभाव सूत्रेति तन्मयतया सर्वोभिनेदु भूतविदलम् यत्किङ्करी दर्शा सन्तासुभानि नित्यं तरत्वपुरुषस्थितिकं नमौ यस्यार्थकारस्मितेति सुमानुजाय तपकेलिभवनं मार्जनि वृद्ध दशा को प्राप्त तो फिर इच्छा साधन करने वाले की तो बात भी है। और ये श्लोक इससे भी ऊपर वाला है, अनुराग इसके बाद में भाव, उसके बाद में महाभाव, उसके बाद ऊपर का वहां जो एक श्लोक में आया था प्रायो बतांग विहगाम उसमें है कि आरुह्य दे दू भुजा रुचि प्रवाह आरुह्य माने दो अप, एक अप तो मैं छोड़ दिया दूसरे ही छोड़ दिया। आरुह्य माने एक तो होता है ऊपर बैठ कर आरोहण कर और एक होता है आरुह्य माने उसको अतिक्रम कर उसे ऊपर जाकर भी उसको छोड़ करके उसको अतिक्रम करके ऊपर बोलो वो जो मुनि है उन सब स्थितियों को अतिक्रम करके उन भुजाओं ध्रुव भुजाओं को ध्रुव के जो डालियां हैं उनको अतिक्रम करके उससे ऊपर चले गए। कौन वो जो देश वाला जो बताया 1100 कितने शाखाएं हैं इन सबको अतिक्रम करके ऊपर में चले गए और तब भी उनकी प्रशंसा नहीं की मयूरों की और उनको तो प्रशंसा की मयूर कोकिल सुर और इन लोगों को समस्त नंदन के श्रेणी में रख करके और इनको बतला दिया मौनी और मुनि बतला और वो लोग भक्त कोटि में आ गए। अब उससे भी स्थिति ये ऊपर क्रमशः चलता चला जाए। मान लिया कि पहले तो यदि प्रेम रखो तो दूसरे श्लोक से जब आरंभ करो प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव ये महाभाव की स्थिति इस लोक समाज में चैतन्य महापुरुष इन श्लोकों का की अवतारणा नहीं करते बस 2.5 लोगों कितना 3.5 लोगों की है इसकी मर्यादा समझते हम लोग क्या समझेंगे प्रेमी नहीं समझते हैं भावी नहीं समझते हैं निष्ठा तक भी नहीं समझ में आता है कि निष्ठा किस होता है निष्ठा बुद्धि ही नहीं होता कभी एक प्रसंग चल रहा है हम लोग उसमें चल रहे हैं यदि किसी का परम सौभाग्य होगा कि उसकी एक हवा लग जाएगी तो भी तो कभी तो शीतल हो ही जाएगा बस इतना या वर्षा गिरी उसका एक गो बूंद कहीं लग गया तो भी कल्याण इसलिए हम लोग इस काम की नहीं कर रहे हैं। तो गोपियों की भावों की चिंता करके गोपियों के नदियों की उनकी महत्ता का चिंतन करके कुछ स्पष्ट हो गए तो इतना ही लोगों के द्वारा संभव है। ये कैसे संभव है? हम लोग नदियां नदियों को समझ में, एक ने तो ये कहा कमल रूपी उपहार को लेकर के चरणों में सर्वस्व निवेदन करके और कितना तक पानी हो करके उनका आलिंगन कर दिया। ये हम लोगों के द्वारा कहां संभव, कहां वो मिलेंगे? मिलना उनका बड़ा दुष्कर है। दूसरी सखी कह रही है, अरे सखी तो एक दिन की बात कह रही है, एक दिन की बात तुमने देखा और ऐसा कह दिया कि यमुना जी एक दिन उनकी तरंग रूपी हाथों से उनके चरणों में कमल। हम तो देखते हैं कि ये जो नदियां हैं कृष्ण के प्रति पहले से ही अनुराग पति, इनका ये उर्वरागी त्यागी कुछ नहीं, इनका नित्य ही कृष्ण के प्रति ऐसा अनुराग है और भी इनसे इनका मिलन होता है यमुना से। हम तो देखते हैं कृष्ण कभी गोचारण करने के लिए आए, दूर में है भट दूत भेज दिया अपना दूत उनके पास, आपके लिए प्रतीक्षा हो रही है। तो यह दूत कौन? यमुना जी ने जो कमल है उनका जो सुगंध है वो हवा में मिला, हवा दूत बना और लेकर के कहां पहुंच गया? कृष्ण के पास में पहुंच गया। माने ये यमुना जी संवाद दे रही है आपके मिलने के लिए, हम उत्कंठित हो रही है आप। अब इससे क्या हुआ, किसने देखा जो यमुना में, यमुना मालूम है निकट है, सब पूछ रहे हैं, पानी खूब सूखी था, अभी गर्मी का समय, सब सखाओ और बच्चों को लेकर के हम चले और स्नान कराने, पिलाने कराने, सखाओ पानी पीने, बछड़ों को भी पानी पिलाएंगे और वहीं पर सूखी सब टाइम में हम विश्राम भी करेंगे। दूसरी बात, उसमें कमल है ना, कमल पर धौरे बैठे और धौरे भन भन करते हुए उड़े, एक तो सुगंध लेकर के भी, और मानो यमुना जी ने संदेश उनको दिया, जाओ तो तुम्हारे जैसे ही होंगे, अपने जैसा श्याम जिसको देखना, तुम्हारा गुण कुछ कुछ उनमें भी संकम्म है, जैसे तुम हो ना, नित नए नए फूलों को बैठते हो, ऐसे ही लोग होंगे, तुमने तुम जाकर के उनको संदेश देना, ये पार्टी में यमुना जी तुम्हारे लिए, वो भन भन उठता हुआ मानो वो यमुना जी का संदेश लेकर के कृष्ण के पास, और फिर वो कृष्ण संदेश पाते हैं और रह सकते हैं भले जहां से तहां रह सकते, और आ करके कपड़े उतारे और सखाओं के साथ में बस यमुना जी ने विहार करने लगे। सखियों के साथ ही यमुना ने कृष्ण के विहार का वर्णन बहुत स्थलों में आया, वो यमुना जी का कितना सौभाग्य कि ऐसा उनको उपलब्ध है कृष्ण से मिलन का, हम लोगों के लिए संभव है। ऐसा यमुना जी का सौभाग्य विचार करके हताश हो गई और हताश होकर के फिर आकाश की तरफ में देख करके लंबी आंख, अरे देखा ऊपर में देखा क्या, भाव में देखा। दूसरी बात, एक और यमुना जी गोस्वामी जी कहते हैं गोपियों का यह भाव नदियों के संबंध में कुछ प्रकट हो गया, उनका जो मधुर रस का जो विचार था, भाव था, उनसे मिलने की तीव्र आकांक्षा, ये बात प्रकट हो गई। किंतु बात लज्जा की है, उनसे मिलने की बात कही गई, इसलिए अब उनको छिपाना चाहती है। उस छिपाने के लिए श्रृंगार रस नीचे उतर करके सख रस में आ गए और श्रृंगार रस के द्वारा सख रस के द्वारा श्रृंगार रस को ढकने लगे।
कहीं जा रहे हैं, हवा का झोंका आया घूंघट में, थोड़ा सा ऊपर उठे बाएं हाथ से उसको फिर जल्दी से ठीक कर दिया। ठीक ऐसे ही उनका यह भाव गोपनीय हृदय में रखने जो और यहाँ पर प्रकाशित हो गया सब लोगों के सामने, इसलिए उसी को ढकने के लिए ये दूसरे भावों की अवतारणा करके उसको छिपाने की चेष्टा करने लगे। इसलिए कहती है सहराम गोप संचार प्रेम प्रबिध उदित कुसुम आवली भी भाव नेत्र से देख रही है। क्या देख रही है? अब दृष्टा का दो बार लगा दो, दृष्टा दृष्टा, अतः गोपियां तो भाव नेत्र से देख रही है। क्या देख रही है? कि श्याम सुंदर का वन में एक और सखा है। वो सखा कौन है? जो कृष्ण के लिए मिलने के लिए सब समय आतुर रहता है, वो है मैं। वो सखा कैसे बन गया? इसलिए बन गया जो श्याम सुंदर श्याम है वो भी है श्याम। लोग तुलना देते हैं नव जलधर श्याम, नव जलधर श्याम। कृष्ण कैसे हैं श्याम? तो नव जलधर के समान है जलधर, नए जिसमें पानी है, ऐसे मेघ के समान कृष्ण श्याम सुंदर। कृष्ण पीताम्बर पहनते हैं, वो भी कृष्ण की देखा देखी सखा है, विद्युत मानो वो पहन लिया। कृष्ण बंसी बजाते हैं, वो बंसी बजाने के मिस बहाने बंसी से वो गर्जन करता है। इस तरह से कृष्ण भी बड़े सरस हैं, ये भी बड़ा सरस है। कृष्ण बड़े चंचल हैं, और मैं कैसा होता है स्थिर होता है, वो भी बड़ा चंचल है। इस तरह से बहुत सी दोनों में तुलनात्मक भाव है, इसलिए दोनों में सख भाव हो गया। अब वो दृष्टा अम्बुद, वो जो अम्बुद, अम्बुद माने अम्बुद, अम्बु को देने वाला, अम्बु माने पानी, पानी को बरसाने वाले को अम्बुद। वो अम्बुद देखकर क्या देखा उसने? दृष्ट्वा तपे आतप, आतप माने गर्मी का समय, दोपहरी का समय है, चिलचिलाती हुई धूप पड़ रही है, कहीं भी छाया छाया नहीं है, कुछ छाया से चले आए हैं और छाया की तरफ। कृष्ण के साथ में ब्रज पशुन सह, ब्रज के पशु हैं माने गायें हैं, महिष्य हैं और सब हैं, और साथ साथ में राम और दूसरे गोपाल सखा है, राम गोपाई, राम आदि सुबल सिदाम इत्यादि सब सुकुमार लड़के हैं और बच्चे ये सब हैं। देखकर मैंने वो सखा इस समय बड़ी विपत्ति में है, सानुभूति में, इसका तात्पर्य देखकर कहीं इस गर्मी में छाया कहीं नहीं और इनको कष्ट हो रहा है, जमीन गर्म है, बालू वृंदावन को ऐसे ही ब्रज में कहीं कहीं पर रेतीली जमीन है, इसलिए इनके पैर कहाँ रखेंगे, पशु भी वैसे ही पानी के लिए मुश्किल है, पानी कम मिलता है, इसलिए देख करके। और देखा क्या, एक चीज और लगती है कि कृष्ण हमें बुला रहे हैं। जब किस सखा को सहायता के लिए बुलाया जाता है, मानो वो बुला रहे हैं। कैसे बुला रहे हैं? बेनु गीत के द्वारा। कौन गीत के द्वारा आह्वान कर रहे हैं?
मल्लाराज, मल्लाराज माने होता है मेघों को उकलाना, तो मेघों को मल्लाराज से मानो मेघों का आह्वान कर रहे हैं और उसको सुन करके मेघ सब दौड़ करके ये हमारे सखा हमको बुला रहे हैं ऐसा देख करके संचारे अंतुम अनुवेणु उदीर अंतम गायों को संचालन करते हुए चरा रहे हैं इधर और छाया इत्यादि नहीं और वेणु को बजा रहे हैं कैसे वेणु बजा रहे अनु गायों के पीछे चल रहे हैं और गर्मी देखा उसके अनु ऐसा भी अर्थ और एक अर्थ पीछे बतलाऊंगा अनुकार होता है निरंतर बार बार बजा रहे हैं और तीसरा अर्थ अनु मैंने जिधर जिधर मेघ है उधर ही उधर तरफ में बजा रहे हैं उनको देख कर के तो ये कौन है भाई यहाँ गड़बड़ कर रहा है उनको हाथ जोड़ करके कहिए तो संचारयन्तम् अनु वेणु उदीरयन्तम् वेणु को उन्होंने बजाया निरंतर बजाया उनको देख करके बजाया अथवा जहां जहां पशु जा रहे हैं